सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
ओम शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। राजयोग अभ्यास के विभिन्न सत्रों में हम सुनते रहे हैं राजयोग से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। अनेक प्राप्तियां हम राजयोग से अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं और उनमें से एक है शक्तियों की प्राप्ति। तो वो कौन सी शक्तियों का विकास मानव जीवन में होता है जिससे जीवन परिवर्तन होने लगता है, उस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। कहते हैं यूं तो मनुष्य भी जीते हैं और पशु भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में अंतर है। मनुष्य बुद्धिमान विवेकशील प्राणी है और वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है। पशु ऐसा चाहें तो भी नहीं कर सकते। वो जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी रचना रचते हैं, उसकी पालना करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। मनुष्य भी यदि ऐसा ही जीवन जीकर चला जाए तो ये उसके जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। बाइबल में एक जगह आता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न देव स्वरूप बनाया। लेकिन मनुष्य जब स्वयं को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तो फिर कर्मों से गिर जाते हैं और हम आज इस संसार के वर्तमान युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, इस कलयुग तक पहुंच चुके हैं। आपने बहुत विस्तार से समझा है चारों युगों को और कलयुग के अंत में परमात्मा अपने वायदे के अनुसार पुनः धर्म ग्लानी के समय पर, जब मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तब अवतरित होते हैं और पुनः सत धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य को धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं। तो राजयोग का अभ्यास मनुष्य में देवत्व का विकास करता है, मनुष्य को देवता बनाता है। जो आपने सुना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण हुए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। कई भाई बहने हमसे पूछते हैं क्या राजयोग का अभ्यास करने से हमें जीवन में कोई सिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि भारत में अनेक संत या सन्यासी इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाती है। वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे कि ये भभूत लेने से आपका रोग निवारण हो जाएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा होता भी है, कई बार नहीं भी होता, कई बार हो भी जाता है। तो ये निर्भर करता है कि लेने वाले की आस्था कितनी गहरी है। वो आस्था काम करती है, भभूत काम नहीं करती है। लेकिन इस प्रकार के चमत्कारों से उन्हें नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन समाज का कोई कल्याण नहीं होता, उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे। कहा, आपके आश्रम के पास ये जो नदी बह रही है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, आपका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। उन्होंने कहा, अच्छा आपको कितने वर्ष लगे इस सिद्धि को प्राप्त करने में? तो कहा, पूरे 12 वर्ष का समय मैंने साधना की है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद नदी पार गांव से उनका दूध वाला आता था। तो वो दूध वाला आया तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही उससे पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? उसने कहा, 1 पैसे में। तो रामतीर्थ ने उन सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए। आपने सन्यास क्यों किया है? सन्यास ईश्वर प्राप्ति के लिए किया है। यही आपने ईश्वर तक पहुंचने की साधना की होती तो शायद अब तक अपनी मंजिल को पाया होता। तो जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, जीवन ही श्रेष्ठ बन जाए, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएं, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। जीवन में जो भी कमजोरियां हैं वो अंधकार के समान हैं। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार से प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश कर दिया जाएगा तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अलग से हमें अंधकार दूर नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में यदि हम गुणों और शक्तियों का विकास करते हैं तो विकार अपने आप विदाई लेने लगते हैं, उन्हें दूर करने की मेहनत हमें नहीं करनी होती। और यदि हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं तो घर घर की स्थिति कैसे दिखाई देती है? घर घर की स्थिति आज हम कहेंगे नरक के समान है। क्यों कहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज में जब विकास के चरम पर आज मनुष्य है तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका कारण है कि घर घर में आज भी स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, नफरत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं घर घर में रामायण महाभारत चलती है। हमारे जो दो शास्त्र हैं ये मनुष्य की दो कमियों पर बने हैं। हम सब जानते हैं, रामायण की कहानी भी जानते हैं और महाभारत की कहानी भी जानते हैं। रामायण की कहानी ईर्ष्या की कहानी है। जैसे ही राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की कि कई की दासी मंथरा, उसे ईर्ष्या हो गई। क्यों राम राजा हो, मेरी रानी का बेटा भरत राजा होना चाहिए। रानी के कई को महाराज दशरथ ने 2 वर दिए हैं। रानी के कई ने महाराज दशरथ की प्राण रक्षा की थी तो उसे प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने उसे 2 वर दिए थे। वो 2 वर उसने लिए नहीं थे तो उसने कहा ये सही समय है कि केकई को अपने वर ले लेने चाहिए और भरत के लिए राज तिलक मांगकर राजमाता उसे होना चाहिए। और उसने वही बात केकई को समझाई और केकई ने राजा दशरथ से वो 2 वर मांगे। राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी हुई। महाभारत की कहानी भी हम जानते हैं, भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन कभी भी उनमें आपस में प्रेम नहीं रहा। हमेशा राज्य को लेकर, धन संपत्ति को लेकर द्वेष था और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के 2 शब्दों ने। कौन से 2 शब्द कहे? अंधे का बेटा अंधा। वो दुर्योधन को इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया, मुझे इस अपमान का बदला लेना है, और इसीलिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन धोखे से उनको जुए ने हराया और अपने अपमान का बदला लिया और पांडवों को वनवास हुआ। 13 साल के बाद जब वो लौट कर आए तो कहा, राजे तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश। प्राप्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं। आज घर घर में हम भाई भाई का द्वेष देखते हैं, और द्रौपदी जैसे एक शब्द तो क्या सारे दिन में कितने शब्द हम बोलते हैं जिससे दूसरों का अपमान हो जाता है। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है जिसके कारण आज घर घर की ये दशा है? और यदि हम उन शक्तियों को अपनाएंगे अपने जीवन में तो वही घर घर स्वर्ग हो सकता है। तो आपने देखा अष्ट शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति है सहन करने की शक्ति। हम आज किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकते, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, या जैसे को तैसा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भाव होता है। फिर हम सोचते हैं मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों सहन करूं, और अगर मैंने सहन कर लिया, यदि हम चुप रह गए तो हमारी ही गलती मानी जाएगी, और हम चुप रहे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, और इस तरह से हम कभी भी सहन करना नहीं चाहते। और कई बार इस कारण छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती हैं। अभी ही कुछ दिनों के अंतर में मैंने दो समाचार पढ़े। एक समाचार था दो बहनों के बीच में झगड़ा हुआ रिमोट को लेकर के। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को रिमोट नहीं दिया, और आपस में झगड़ने के कारण बड़ी बहन ने कोई ऐसे शब्द बोल दिए उसको छोटी को कि उसे इतनी फीलिंग आ गई कि उसने जहर पी लिया, और वो जहर पीने के बाद 30 दिन तक वो अस्पताल में रही, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सके। बताइए, बात जरा सी है लेकिन मरने तक पहुंच गए। और अभी दूसरा ही समाचार कल पढ़ा, एक बाप और बेटे में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, तो गुस्से में बाप ने जो बेटे के हाथ में स्मार्टफोन था उसे खींच करके फेंक दिया, तो टूट गया। अब वो फोन टूट गया तो वो बेटे को इतना गुस्सा आया कि घर में जो लाठी थी वो उठा के उसने अपने बाप को पीटना शुरू किया, अधमरा कर दिया उसको, और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और 3-4 दिनों में उस पिता की मृत्यु हो गई। बताइए, शायद रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने चरम तक नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं कि बात कुछ खास नहीं होती है लेकिन हत्या तक कर देते हैं लोग, इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान कहता है क्रोध थोड़े समय का पागलपन है। जब हम सहन नहीं कर सकते तो हम क्रोध में आते हैं, और जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और परिणाम हमेशा ही पश्चाताप उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब ज्यादातर गुस्सा हमें कब आता है, कब आता है? किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ज्यादातर गुस्सा हमें तब आता है जो मैंने कहा वैसा नहीं हो रहा, या वैसा नहीं किया जा रहा, या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हरेक व्यक्ति का व्यक्तित्व भावनाएं अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं, उनके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। और जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, मानो मेरे फैमिली मेंबर हैं जहां हम काम करते हैं, तो वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, कभी एक बार ऐसा होता है जब वो समझ रहे हैं कि वो सही हैं आप गलत हैं, इसीलिए आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो हो सकता है हम भी गलत हों, जरूरी नहीं है हमेशा ही हम सही होंगे, हो सकता है हम बड़े हैं तो भी हम गलत हो सकते हैं। तो यदि वो सही हैं तो हमें उनकी बात मानना चाहिए, लेकिन कहाँ ना कहाँ हमारा अहम होता है और उस अहम के कारण हम दूसरों की सही बात भी स्वीकार नहीं कर पाते और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसी संबंधों में ये आपसी समझ जब होती है तो क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। दूसरा है, काम करवाने के लिए हम गुस्सा करते हैं, किसी ने काम में गलती कर दी, हम जस्टिफाई करते हैं अपने गुस्से को, लोग काम ही नहीं करेंगे अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो, जरूर गुस्से से काम होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि जो काम करते हैं उनको भय होता है तो वो चुप रह जाते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी भावनाएं आपके प्रति बदल जाती हैं और वो अवसर ढूंढते रहते हैं कब उनको अवसर मिलेगा और वो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, तो उसके भविष्य परिणाम कई बार बुरे हो सकते हैं। अगर कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो क्या हमें पसंद आता है? तो जब हमें गुस्सा पसंद नहीं आता, हम सोचते हैं काम तो करना ही है, कम से कम प्रेम से तो बोल सकते थे, थोड़ा अच्छे शब्दों में तो कह सकते थे, तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही व्यवहार दूसरों को भी हमारे से पसंद होता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमने गुस्सा किया तो जरूर आप जैसा कहेंगे वैसा बच्चे करेंगे, क्योंकि उनको भी भय होता है, तो भय के कारण चुप हो जाएंगे, किताब उठा के पढ़ेंगे, लेकिन गुस्से में कई बार हम अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं बच्चों को, अच्छे शब्द का मतलब समझते हैं आप, ये नालायक है, ये बेवकूफ है, गधा है, कभी सुधरने वाला नहीं, ना होता तो अच्छा था, जो मन में आएगा उस समय बोलते हैं। और बच्चे वो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब वो पढ़ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं मेरे माता पिता ने ऐसे मुझे कहा, और फिर वो आपसे गुस्सा करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर अपनी बात मनवानी है तो माँ बाप भी गुस्सा करते हैं, अगर मुझे अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा ही करना होगा, तभी मेरी बात मानी जाएगी, तो आपका सामना करने लगते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? बच्चों को समय दें और उन्हें प्रेम से समझाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करना है तो क्यों करना है। आजकल के बच्चे आईटी के जमाने के बच्चे हैं, वो हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों करें, और यदि आप उन्हें कन्विंस कर पाते हैं तो अवश्य वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है, हम सोचते हैं एक बार इनको समझा दिया, समझ में नहीं आता है, इतना मेरे पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा समय भी कहाँ जाता है, जैसे हमने कल बात की, सोशल मीडिया में हमारा भी समय जाता है, बच्चों के साथ इतना समय हम भी बिताते नहीं हैं। फिर कभी कोई हमारी कमी निकालता है और हमने सुन लिया, पीठ पीछे किसी ने मेरी निंदा की है, तो हमें सहन नहीं होता है। ज्ञान कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। कबीर दास जी ने भी कहा निंदक नियरे राखिए। तो निंदा करने वाला मित्र हो सकता है निंदा करने वाला मित्र हो सकता है? हमें तो दुश्मन ही लगता है। वो जो हमारी कमी निकालता है वो इंसान हमें पसंद नहीं आता। हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। लेकिन निंदा करने वाला भी मित्र हो सकता है क्योंकि वो मुझे मेरी कमी बता रहा है। भले निंदा करने वाला बड़ा चढ़ाकर कहता है शायद उतनी कमी नहीं होती है, लेकिन वो 1% भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती जरूर है। मानो आप ऑफिस में जाते हैं, रोज टाइम पर जाते हैं, अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, लेकिन किसी कारण से 2-3 दिन आप लेट हो गए, समय पर नहीं पहुंच पा रहे। आपने काम में भी थोड़ा ऊपर नीचे किया, तो जो आपका निंदक है उसे अवसर मिलता है और वो आपके लिए कहेगा ये तो है ही लापरवाह, ये कभी भी अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो हमेशा ही लेट आते हैं। अब ऐसा वास्तव में है नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है 1% भी कहीं मेरी कमी है तो हम उसे दूर करेंगे तो दूसरों की शिकायत हमसे दूर हो जाएगी और हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। पर कई बार सचमुच वो कमी हमारे अंदर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ध्यान नहीं दें। जब वो कमी है ही नहीं मेरे अंदर तो हम क्यों उसे मन पर लेते हैं? एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा अपने ट्रस्ट के लिए, जो वो कोड़ियों के लिए एक अस्पताल चलाते थे, उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो एक बिजनेसमैन के पास वो गई। तो बिजनेसमैन की राय उनके बारे में अच्छी नहीं थी, तो जब उसे पता चला कि मदर टेरेसा किस इंटेंशन से आई हैं, तो उसने जो उनके मन में था वो कहना शुरू किया, जो बहुत अच्छे शब्द नहीं थे, लेकिन मदर टेरेसा ने चुपचाप सुना। और जब उन्होंने पूरा किया तो मदर बोली कि सर ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे मरीजों के लिए क्या दे रहे हैं? तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तो उनको लग गया, उन्होंने कहा देखो मैंने इतना बुरा भला खा इनको, इन्होंने जरा नहीं बुरा माना और अभी भी इनको अपने मरीजों का ख्याल है। तो क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि उनको पता था कि इनको गलत फहमी है, ये कुछ सही नहीं है। तो हम भी उस बात को अगर चित पर नहीं लेते, महात्मा गांधी जी ने कहा नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन, अगर हम ना चाहें तो कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, हम उसे ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। और कभी हमें गुस्सा आता है अचानक, हम समझ नहीं पा रहे, तो हम एक तरीका और अपना सकते हैं, उसे पोस्टपोन कर दीजिए, टाल दीजिए थोड़े समय के लिए। हम अपनी बात कहेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट के बाद कहेंगे। वो जो समय मिलता है उस समय में हमारा दिमाग तो चलता रहता है, हमें समझ में आ जाता है सारी गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी भी गलती है, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ कहने की जरूरत है भी, मानो उनकी गलती है, तब तक हमारा आवेश ठंडा हो जाता है और अब वही बात हम शांति से कहते हैं। कोई बात हम गुस्से में कहते हैं, कोई बात हम शांति में कहते हैं, फर्क पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता, उसका समाधान होता है, सामने वाला उसे स्वीकार करता है। गुस्से में कहा तो सामने वाला भी गुस्सा ही करता है और वो भी सिद्ध करने लगता है, गलती भी होगी तो भी वो मानेंगे नहीं। एक बार एक पति पत्नी दोनों गुस्से वाले स्वभाव के थे, एक शांत होता है एक गुस्सा करता है, तो शायद घर का वातावरण इतना नहीं बिगड़ता, लेकिन उनके घर में रोज ही किसी ना किसी बात को लेकर कलह हो जाता था। तो एक दिन उनकी पड़ोसन आई और उसने उस बहन को कहा कि बहन, मैंने अपने घर में कथा रखी है, आपको कथा में आना है। उसने कहा ठीक है, गई कथा में। तो एक पंडित जी थे जो कथा सुना रहे थे। जब कथा पूरी हुई उस दिन उसका मन बहुत ही अशांत था, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं पंडित जी से बात करूं, शायद ये मुझे कुछ हल बताएंगे। तो उसने बात की और सारी घर की स्थिति बताई। तो वो पंडित जी ने कहा कि मैं आपको उपाय बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा बोलिए क्या शर्त है। कहा कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी तब मैं बताता हूं। उसने कहा जरूर करूंगी, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसे दिया। कहा देखो, जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रखना, पानी पीना नहीं है, पानी मुंह में रहेगा। जब तक आपके पति बोल रहे हैं तब तक पानी मुंह में रहेगा। वो समझ गई, जैसे आप समझ गए। अब घर गई वो, रोज की बात थी, पति ने किसी बात पर गुस्सा किया तो आज वो वादा करके आई थी, इसीलिए पानी मुंह में रख दिया। अब पानी मुंह में था तो बोल नहीं सकती थी, बोलना तो चाहती थी पर बोल नहीं सकती थी। तो पति ने सोचा इसको क्या हुआ है, रोज इतना बोलती है, आज चुप कैसे है। सहन नहीं हुआ उसका चुप रहना भी, तो और जोर जोर से बोला कि कुछ बोलेगी, लेकिन पानी मुंह में था इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, आज भी उसने पानी मुंह में रखा। अब पानी मुंह में रखा तो शांत थी बिल्कुल। पति ने सोचा ये बदल गई है क्या, सचमुच बदल गई है। तो ट्राई किया थोड़ा, देखे गुस्सा करती है कि नहीं करती, पर क्योंकि वो वादा करके आई थी पंडित जी से, इसलिए हर बार वो पानी मुंह में रखती थी। और ऐसे कितनी बार हुआ उसने पानी मुंह में रखा, और जब पति को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ इसने अपने आप को बदल लिया है, ये शांत हो गई है, तो फिर उनका ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता हूं, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी दो लोग नहीं बोलते तो बात ज्यादा बढ़ती नहीं है। ऐसे घर में शांति हो गई और वो बहन इतनी खुश हुई, वो गई उन पंडित जी के पास। कहा पंडित जी, मैं नहीं जानती मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं, आपने सचमुच मेरे नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उसने कहा वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था। आपने देखा, तो आपने देखा, आपने पानी मुंह में रखा, आप शांत रही तो कितने अच्छे परिणाम मिले आपको। ऐसे ही आप सदा शांत रहो, आपका घर सदा ही स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं बहन जी कहानी तक ठीक है, हम सचमुच चुप नहीं रह सकते। अगर कोई हमारे को गुस्सा कर रहा है तो हम चुप नहीं रह सकते। चुप रह सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, जो समझते हैं रह सकते हैं, कई रहते भी होंगे हाँ, लेकिन जो समझते हैं हम रह सकते हैं वो हाथ उठाइए। हाथ उठा रहे 50% से थोड़ा कम, लेकिन उठा रहे हैं हाँ। जिन्होंने भी हिम्मत रखी है वो अपने लिए ताली बजाइए हाँ। और आप डायमंड हॉल का ये सीन याद रखना हाँ, वहां हमने हाथ उठाया था। तो अगर इतना भी परिवर्तन हम इस राजयोग शिविर से करके जाएंगे हाँ, तो भी ये शिविर में आने की सफलता है। कि अगर हमने अपने क्रोध को जीत लिया, और ऐसे समय में जब कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो सचमुच हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। कल आपको समझाया गया किसी भी परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये हमारा अपना निर्णय होता है, हम जिस दिशा में उसके लिए सोचते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति चाहिए और वो शक्ति हमें राजयोग के अभ्यास से मिलती है। हम देखते हैं जितने भी महान पुरुष इस संसार में हुए हैं उनके जीवन की यही विशेषता थी कि किसी ने उनके साथ कैसा भी किया लेकिन उन्होंने सदा हरेक को क्षमा किया, उनके प्रति करुणा दया रहम भाव रखा, प्रेम किया। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में एक पेड़ जब फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर ही मारते हैं लेकिन फिर भी पेड़ क्या देता है, पेड़ बदले में क्या देता है, मीठा फल देता है। प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। तो क्या मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? हाँ कर तो सकते हैं लेकिन लेकिन मुश्किल है ना? मुश्किल है, कोई मेरी इंसल्ट करे, कोई मेरे को कड़वे बोल बोले, कोई मेरी कमी निकाले और फिर भी हम उससे अच्छा व्यवहार करें, इतना आसान नहीं है ना? तो जिन्होंने किया उन्होंने समाज में बड़े बड़े परिवर्तन लाए, उन्होंने जैसे के साथ तैसा नहीं किया। या हम कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो अंतिम घड़ी भी उनके मुख में वही शब्द थे, क्षमा भाव था। और यही कारण है कि संसार के जितने भी गिरजाघर हैं उसमें आज भी ईसा मसीह की पूजा होती है, वो गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। तो हमें कोई सूली पर नहीं चढ़ाने वाला है, सहन करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको सूली पर चढ़ाने वाला है, लेकिन अपने दिन भर की रोज की जो घटनाएं होती हैं वो छोटी छोटी बातों में अगर हम सहन कर लेते हैं, किसी की गलतियों को, किसी की कमियों को, या किसी के जो भी दोष हैं, तो हमारा जीवन बहुत सहज सरल और मधुर होता है। जीवन के तनावों से भी हम बच जाते हैं। एक बार एक संत थे, महाराष्ट्र के ही संत थे, संत एकनाथ, वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए, हरिद्वार गए। तो वहां जब वो स्नान करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में गली में एक पठान रहता था, तो उसने अपने छज्जे से जब इनको देखा तो उसको मजाक सूझा और उसने थूक दिया उनके ऊपर। तो उन्होंने गर्दन उठा के देखा भी नहीं कि किसने थूका, वो वापस चले गए नदी पर स्नान करने और उन्होंने दोबारा स्नान किया और फिर आए। उसने फिर थूक दिया, ऐसे कितनी बार उन्होंने स्नान किया, कितनी बार उसने थूक दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये पठान को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो नीचे उतरा छज्जे से और उनके सामने आके खड़ा हो गया, कहा जिसने आपके ऊपर थूका है वो मैं हूं, आपको मुझे कुछ कहना है? तो संत एकनाथ ने कहा हाँ जरूर, मुझे आपको धन्यवाद देना है। मैं महाराष्ट्र से इतनी दूर से गंगा नदी में स्नान करने आया हूँ, आज आपके कारण मैंने इतनी बार स्नान किया, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता। देखिए सोच ही अलग है, हमारे ऊपर कोई थूक दे तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरह बता देंगे उसको थूकने का मतलब क्या होता है। तो आध्यात्मिकता हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन ले आती है, तभी हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक सागर है, सागर में इतनी नदियां समाती हैं अपना जल, कैसा भी जल लेकर आती हैं, गंदगी पड़ती है सागर में, लेकिन जो लहरें हैं वो हल्की वस्तु को उठाकर बाहर फेंक देती हैं और जो भारी वस्तु होती है वो सागर के तले में समा जाती है। सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। ऐसे ही एक योगी का जीवन होता है, इस संसार में हम कितनी अच्छी बुरी बातें देखते हैं, लेकिन हम सब नहीं समाते। कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सांस सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वो अनाज को रख लेता है और कचरे को फेंक देता है। तो इस जीवन में भी जो हमारे लिए सार्थक है, उपयोगी है, उसे हम अपनाते हैं, उसे हम समाते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे बहुत समीप मित्र हैं और वो हमें अपनी कोई समस्या के बारे में राय लेना चाहते हैं, तो सब कहते हैं और फिर कहते हैं, देखो ये मेरी पर्सनल बात है, किसी को मत कहना। हम उनको विश्वास भी दिलाते हैं, लेकिन हमारा कोई अपना होता है जिसे हम वो सारी बात कहते हैं और फिर कहते हैं इनकी पर्सनल बात है, मत कहना। अब वो अपने किसी किसको कहता है पर्सनल बात है, मत कहना। अब जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और कई बार उस रूप में नहीं फैलती, उसके अर्थ भी बदलते जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना भाव उसमें ऐड करता जाता है और घूम फिर करके जब उसके पास पहुंचती है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैंने इतना विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। कई बार बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं इसके कारण। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक पंडित जी थे, उन्हें दूसरे गांव में कथा करने जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे टिफिन दे देना, रास्ते में देर हो सकती है। तो उसने टिफिन दिया और जब वो खाने के लिए बैठे, किसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपना भोजन थाली में लगाया तो ऊपर एक पक्षी बैठा था, उसने उसी समय बीट कर दी। वो बीट उनकी थाली में पड़ी तो उनका मन खराब हो गया, उन्होंने खाना छोड़ा, क्योंकि ब्राह्मण थे, खाना छोड़ दिया और घर वापस लौट कर आ गए, कथा करने भी नहीं गए। तो जब वापस लौट कर आए, जल्दी आ गए, तो पत्नी ने सोचा कि ये जल्दी कैसे आ गए, स्वाभाविक है, पूछते हैं क्यों जल्दी आ गए, आप गए नहीं दूसरे गांव में। तो पंडित जी उसको बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी का स्वभाव पता था, उनको पता था अगर इसको पता चल गया तो पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। लेकिन उसने इतना मजबूर कर दिया उनको कि हार के उन्होंने बताया कि देखो ऐसे हुआ कि जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे खाने में पक्षी ने बीट कर दी, तो मैं नहीं गया। तो फिर पंडित जी ने उससे कहा कि देखो तू किसी को बताना नहीं। तो उसने कहा मैं क्यों बताऊंगी, लेकिन उसका आदत थी। दूसरे दिन वो जब कुएं पे पानी भरने गई तो भूल गई। अब वहाँ चार औरतें इकट्ठी थी, उसने बात बात में सारी बात कह दी। अब जब लोग बात सुनते हैं तो कोई कोई पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधी आधी बात सुनते हैं। तो एक ने सुना पक्षी की बीट गिर गई, उसकी बजाय पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया। जब उसने चार लोगों से बात की तो उसमें से किसी ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। अब जब उन्होंने किसी से बात की तो किसी ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब जब बात ऐसे फैली गांव में तो पंचायत ने सोचा कि हमारे गांव में इतने चमत्कारी पंडित जी रहते हैं, मुंह से पक्षी निकालते हैं, ऐसा चमत्कार तो जरूर देखना चाहिए पंचायत में। उनको बुलाया गया। तो जब पंचायत का बुलावा आया तो पंडित जी घबराए, क्यों बुलाया है? क्योंकि पंचायत में बुलाना माना क्या गलती हो गई। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला चमत्कार दिखाने के लिए बुलाया है। कौन सा चमत्कार? मुंह से पक्षी निकाल कर दिखाने हैं। तो वो सोचने लगे पक्षी निकाल कर दिखाने, किसने कहा मैं पक्षी निकालता हूं, मेरे मुंह से पक्षी कहां से निकलेंगे? तो सोचने लगे बात कैसे आई पंचायत तक। समझ में आया कि सारी पत्नी की करामात है, लेकिन अब फंस गए हैं तो बचने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। तो जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं अपने मुंह से पक्षी निकाल सकता हूं, लेकिन जो भी पक्षी निकलते हुए देखेगा वो पक्षी बन जाएगा। तो सारे भाग गए क्योंकि पक्षी कौन बनेगा। अब आपने देखा बात क्या थी और हो क्या गई। ऐसे ही हम जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। क्यों ये कहावत बनी? रावण की हार हुई और राम की जीत हुई क्योंकि जो रावण का भाई विभीषण था वो रावण के सारे राज जानता था और उसने वो राज राम को खोल दिए, इसीलिए राम जीत पाए। आज हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों का हजारों सालों तक गुलाम रहा। उसका कारण भी यही था कि राजाओं के पास ऐसे भेदिए थे जो उनके राज दुश्मन को खोल देते थे और उसके कारण वो विजयी हुए। घर परिवारों में हम देखते हैं समाने की शक्ति नहीं होती, हम किसी की बात को समा नहीं पाते तो संबंध बिगड़ जाते हैं। आज सास बहू के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, बहू सास के सामने तो चुप रह गई, लेकिन जो पड़ोस की बहू है उसको जाकर के उसने सब बात सुना दी। मेरी सास ऐसे ऐसे करती है, मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई और बहू होती तो कब से अलग हो गई होती, मानो। अब वो अपनी सास को कहती है कि उसकी सास ने उसके साथ ऐसा किया, ऐसे करती है। अब ये दोनों सास सहेली हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है उसको बहू के साथ कैसे रहना चाहिए। तो वो सोचती है मेरे घर की बात इनको कैसे पता। तो समझ में तो आ जाता है कैसे पता, अब संबंध सुधरने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे, स्थिति और बिगड़ती है। तो जहां हमें समाना है, जिसे हम गंभीरता का गुण कहते हैं, जो बात जिस स्थान पर जिस भाव से कहनी है, यदि कहनी है तो कहें और अगर राज की बात है नहीं कहनी है तो कभी भी ना कहें। ये गुण ये शक्ति हमें राजयोग के अभ्यास से मिलती है। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलती हैं। कई व्यक्तियों परिस्थितियों को हमें परखना होता है और फिर निर्णय भी लेना होता है। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो जीवन में सफल होते हैं, और नहीं तो पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय ऐसा किया होता। आप देख रहे हैं चित्र में एक जौहरी है, उसे आभूषणों का ज्ञान है और इसीलिए वो अपने व्यापार में सफल होता है, क्योंकि उसे पता है ये असली सोना है या मिलावट वाला सोना है, असली हीरा है नकली हीरा है, असली रतन है नकली रतन है। तो जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है तो हम परख लेते हैं। एक डॉक्टर को बीमारी का ज्ञान है तो वो मरीज को देखते ही बीमारी को परख लेता है कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। एक जज को कानून का ज्ञान है तो अपराधी उसके सामने पेश होते ही वो समझ जाता है इसके प्रति क्या निर्णय करना है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में होता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि को शुद्ध बनाता है, स्पष्ट बनाता है। जैसे साफ पानी में हम तले तक देख सकते हैं क्या है, ऐसे हम मनुष्य की भावनाओं को भी परख सकते हैं, क्योंकि आज मनुष्य अंदर कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं। तो जरूरी नहीं है हमारे सामने जो जैसा बोल रहा है या व्यवहार कर रहा है वो भीतर में भी हमारे प्रति वैसा ही है। तो फिर हम उनकी भावनाओं को जब समझ पाते हैं तो फिर हम उनके प्रति सावधान रह सकते हैं, या जो सही निर्णय हमें लेना चाहिए वो हम ले सकते हैं। ऐसे ही निर्णय करने की शक्ति को तराजू से दिखाया है। तराजू के तीन भाग हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए पलड़े बराबर होने चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए, कांटा सीधा होना चाहिए। हम भी सही निर्णय तब ले पाते हैं जब हमारे मन बुद्धि इस स्थिति में होते हैं, यानी बुद्धि एकाग्र है, मन संतुलित है, शांत है और बुद्धि निष्पक्ष है, तब हमारे निर्णय सही होते हैं। नहीं तो अगर मन उलझन में है, मन अशांत है, मन अनेक विचारों में उलझा हुआ है, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। राजयोग अभ्यास से हमारा मन एकाग्र होता है और मन शांत होता है, साथ साथ में हम परमात्मा से अंतः प्रेरणाएं भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर के साथ संबंध होता है तो वो हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। एक बार एक गांव में एक गधे वाला, वो अपने गधे को चरा रहा था मैदान में, तो उसको एक चमकीला पत्थर मिला। उसे वो पत्थर बहुत सुंदर लगा तो उसने वो किसी तरह से अपने गधे के गले में पहना दिया कि सभी मेरे गधे को देखेंगे। अब वो गधे को लेकर के जब गांव जा रहा था, अपने गली से गुजर रहा था, तो उस गली में जौहरियों की दुकान थी, तो एक जौहरी की नजर पड़ी तो वो बाहर निकल के देखने लगा ये चमकीला पत्थर क्या है। फिर देख के समझ गया कि ये हीरा है और इस गधे वाले को नहीं पता कि ये हीरा है, तो उसने उसको पूछा रोक कर, तुम ये पत्थर बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे 200 रुपये चाहिए, अगर तुम 200 रुपया दोगे तो मैं ये पत्थर बेच दूंगा। तो उसने कहा 200 तो नहीं दूंगा, 100। जैसे हमारा स्वभाव होता है कि हम जरूर तौल करते हैं उसका, तो वो 100 रुपये में अड़ गया। तो उसने कहा 100 रुपये में मैं नहीं दूंगा, वो आगे चला गया। अब दूसरे जोहरी ने देखा, वो भी बाहर निकला, वो भी समझ गया कि इसको नहीं पता ये हीरा है। उसको पूछा पत्थर को बेचोगे? उसने कहा 200 रुपया चाहिए, अगर 200 दोगे तो मैं ये पत्थर दूंगा। उसने कहा लो अभी ले लो। उसने तुरंत 200 रुपये निकाल के उसको दिया और वो पत्थर रख लिया। वो पहला जोहरी सोचने लगा इतना कीमती हीरा मैंने 100 रुपये के पीछे छोड़ दिया, मुझे ले लेना चाहिए वो पीछा करते करते आया उस गधे वाले के पीछे और कहा, लाओ ये लो 100 रुपया, और मतलब पूरे 200 रुपये ही ले लो, और मैं ये पत्थर लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा, लेकिन वो पत्थर तो दूसरे ने ले लिया। तो उसने कहा, कितने में दिया तुमने? उसने कहा 200 रुपये में। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, तुमने इतना कीमती हीरा 200 रुपये में दे दिया उसको, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। तो वो उसकी शक्ल देखने लगा। उसने कहा, तो अगर मैं मूर्ख हूं तो मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो, 100 रुपये के पीछे तुमने कीमती हीरा छोड़ दिया। तो जीवन में कई बार हम ऐसे अवसर चूक जाते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश उस समय सही निर्णय कर लिया होता। पांचवी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सामना करने की शक्ति। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती रहती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, मृत्यु, हमारे परिवार में हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु, खासकर अगर जीवन साथी की मृत्यु हुई या दुर्घटना में जवान बेटे की या बेटी की मृत्यु हो गई, तो कई बार व्यक्ति इतने दुखी होते हैं कि वो दिनों तक महीनों तक सामान्य नहीं हो पाते। लगता है कि उस व्यक्ति के जाने के साथ जैसे उनका जीवन भी चला गया। ऐसे बहुत भाई बहने हमसे कई बार मिलते हैं जिनका जवान बेटा होता है, दुर्घटना हुई, मृत्यु हो गई, उसके बाद माँ कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन रोती नहीं है उसको याद करके, और फिर दवाइयाँ खा खा करके उन्हें अपना जीवन चलाना पड़ता है कि जैसे जी ही नहीं रहे, जीवन को सिर्फ काट रहे हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि ये मृत्यु शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था वो हमारे साथ थी, क्योंकि जो भी आज हमारे संबंध हैं वो कोई ना कोई कर्मों के हिसाब किताब के कारण है, तभी हम नजदीक संबंध में आए हैं। जब उसका वो हिसाब किताब समाप्त हुआ है तो जहाँ उसके कर्म हैं वो आत्मा वहाँ गई है, और जो चली गई वो लौट कर आने वाली है नहीं। तो उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हम अवश्य पालन करें। उनके लिए जो भी हमें विधि करनी है, हम उनको शांति का दान दें, उनके प्रति शुभ भावना रखें ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा दुख भी उस आत्मा तक पहुंचता है और वो उसे दुखी करता है। और भी अन्य कई परिस्थितियां आती हैं जीवन में, मानो कहीं व्यापार में घाटा होता है, ऐसी बीमारी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, अनायास प्राकृतिक आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो हम ये समझते हैं कि जो भी घटनाएं, जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। हम कर्म की गति को समझते हैं, आप बहुत विस्तार से आज शाम को समझेंगे कर्म की गति के विषय में, तो वो समझने के कारण हमारा धैर्य बना रहता है। और हम ये भी समझते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हुआ था वो अच्छा था, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि इस संसार में हर घटना के पीछे कोई राज है, उसमें हमारा कुछ ना कुछ भला है, भले देखने में बुरी घटना हो रही है। गीता में ये बात कही गई, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा। हमारे शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत सुंदर बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर कार्य में मंत्री से सलाह लेता था। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई, राजा की उंगली कटी तो उसने मंत्री को दिखाया। वो मंत्री बुद्धिमान था, ज्ञानी था, तो उसने अपने अनुसार जवाब दिया कि महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कटी है, अच्छा कैसे हुआ, ये मंत्री मेरा विश्वास पात्र नहीं है, मैंने आज समझा। गुस्से में आकर के उसने उसको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था। कुछ दिनों में वो शिकार खेलने के लिए जाता है तो शिकार का पीछा करते करते घने जंगल में सारे सिपाही पीछे रह जाते हैं। अब वहाँ आदिवासी कबीले के लोग रहते थे और उस दिन देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाने का दिन था। अब वो ढूंढ रहे थे, ये राजा पकड़ में आ जाता है। सारी बात राजा को पता चलती है तो वो कहता है, मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाओगे? तो आदिवासी कहते हैं, राजा तो सर्वोत्तम होता है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ले जाते हैं उसको मंदिर में। अब मंदिर में पुजारी देखता है, बलि के नियम के अनुसार तो देखा राजा की तो उंगली कटी हुई है, ये तो संपूर्ण बलि नहीं है, बलि का कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो देवी तो इसे स्वीकार नहीं करेगी, तो कहा इसको छोड़ दो, कोई दूसरी बलि ढूंढो। राजा छूट जाता है वहां से और जब वो लौट रहा होता है अपने राज्य की ओर तो उसे सारी बात याद आती है। मंत्री जी ने ऐसा कहा, बिल्कुल सही हुआ, आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। तो वो सीधा मंत्री के पास पहुंचता है जेल में और उसे जेल से फ्री करके कहता है, मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे आपकी बात समझ में आई। सारी घटना सुनाता है, फिर कहता है, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। मंत्री कहता है, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, और अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती क्योंकि मैं तो संपूर्ण था। अब देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी, लेकिन उसमें दोनों का ही भविष्य में भला छुपा हुआ था। कई बार हमारे जीवन में भी जो होता है वो हमें भविष्य में समझ में आता है कि इसमें मेरा क्या भला था। तो ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण है और ऐसा दृष्टिकोण हमें आध्यात्मिकता ही देती है। एक राजयोगी हमें राजयोगी ये भी समझता है कि परमात्मा मेरे साथ है और जब ईश्वर मेरे साथ है तो फिर मुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ है, माता पिता समर्थ हैं तो बच्चा निश्चिंत होता है, ऐसे ही सर्व समर्थ परमात्मा हमारे साथ है तो हम अपनी चिंताएं उनको सौंप सकते हैं। जैसे भागवत में प्रसंग आता है जब जयद्रथ ने अभिमन्यु का चक्रव्यूह में धोखे से वध किया और अर्जुन को पता चला तो गुस्से में आकर के उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं खुद को ही जिंदा चिता में जला दूंगा। अब कृष्ण को पता था ये इतना आसान नहीं है, तो वो रात को शिविर में सब सो रहे थे लेकिन कृष्ण उस दिन युद्ध की योजना बना रहे थे। उनको पता था अर्जुन को जिताना है, अगर अर्जुन नहीं जीतेगा तो क्या हो सकता है। लेकिन जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो देखा ये तो सोया हुआ है, उनको आश्चर्य हुआ ऐसी प्रतिज्ञा करके ये सो रहा है, सो कैसे सकता है। उठाया उसको, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको याद नहीं है तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि माधव मुझे पता है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप मेरे साथ हैं और आप मेरी चिंता कर रहे हैं तो मुझे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। तो जब भगवान हमारे साथ हैं तो हम कहते हैं डरने की क्या बात है, हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से राजयोग के अभ्यास से हमें ये हमने पांच शक्तियों की बात की है, लेकिन और भी हमें तीन शक्तियां जो प्राप्त होती हैं इसके बारे में विस्तार से हम कल सुबह चर्चा करेंगे। आज आप सबको पता है दादी जानकी जी हमारे मध्य में आने वाले हैं, 12 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे हॉल में। तो किसी भी भाई बहन को उठना नहीं है, आप सभी बैठे रहेंगे। तो हमारे बाद अभी शीलू दीदी क्लास कराने वाले हैं। इस यज्ञ को, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 80 वर्ष हुए हैं की स्थापना हुई है। और आप सबने सुना है दादा लेखराज जो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए, परमात्मा शिव ने उनके तन को अपना माध्यम बनाकर ये ईश्वरीय कार्य प्रारंभ किया। तो ये सफर कैसे रहा, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या कठिनाइयां आई और कैसे सफलता पूर्वक आज 80 वर्षों तक ये विद्यालय कार्य कर रहा है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, बहुत विस्तार से आपको शीलू बहन जी सुनाएंगे। तो वो इतिहास हम सुनेंगे अभी एक घंटा, और उसके बाद फिर मुख्य प्रशासिका दादी जी से हम वरदानी बोल सुनेंगे, उनके आशीर्वचन सुनेंगे। तो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, बाकी बचा हुआ कल प्रातःकाल के सत्र में हम पूरा करेंगे। ओम शांति।